नमस्कार, आज हम अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के एक बहुत ही गहरे उद्बोधन पर बात करेंगे
जी।
शीर्षक है जीवन के देवता को आओ तनिक संवारें।
बहुत सुंदर शीर्षक है।
हाँ, और ये उद्बोधन ना जीवन की कीमत और उसे सही मायने में जीने के तरीके पर रोशनी डालता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें से वो खास बातें निकालें जो हमें सोचने पर मजबूर करें, शायद रोज की जिंदगी में कुछ काम आए।
बिल्कुल, एक सार्थक चर्चा होगी।
तो शुरू करते हैं एक कहानी से जो पूज्य गुरुदेव ने सुनाई है। एक राज्य था, वहां एक अजीब सा रिवाज था।
अच्छा, क्या रिवाज था?
कि राजा को सिर्फ 5 साल राज करने मिलता था, उसके बाद उसे एक बिल्कुल सुनसान वीरान द्वीप पर छोड़ाते थे।
ओ, जहां वो तड़प कर मर जाए।
हाँ बिल्कुल। तो जाहिर है ज्यादातर राजा क्या करते, वो 5 साल खूब ऐश करते, भोग विलास में डूबे रहते
और फिर अंत में रोते पीटते उस द्वीप पर जाते होंगे।
हाँ बिल्कुल वही। लेकिन
एक समझदार राजा आया। कहानी में मोड़ यहीं से आता है ना?
सही पकड़ा। तो ये राजा समझदार था। गद्दी पर बैठते ही उसने पहला सवाल क्या पूछा कि भाई 5 साल बाद जाना कहाँ है।
दूर की सोची उसने।
हाँ, और जब उसे उस वीरान द्वीप का पता चला तो उसने क्या किया, उसने सरकारी खजाने का सही इस्तेमाल किया।
अच्छा,
कैसे? उसने कारीगर भेजे, बढ़िया सा महल बनवाया, वहाँ सुंदर बाग लगवाए, दुकानें खुलवाई, पूरी एक बस्ती बसा दी उस वीरान जगह पर।
वाह।
और फिर 5 साल जब पूरे हुए तो वो दुखी नहीं था, वो हंसी खुशी उस संवारे हुए सुंदर द्वीप पर रहने चला गया।
कमाल है। पर ये कहानी ये हमारे जीवन से, मतलब हम आम लोगों के जीवन से कैसे जोड़ती है? क्या हम सब राजा हैं?
पूज्य गुरुदेव यही तो समझाते हैं, ये जो जीवन हमें मिला है ना, ये भी एक तरह का राज्य है।
मिला तो है पर थोड़े समय के लिए।
अच्छा,
जैसे उस राजा को 5 साल मिले थे। हाँ बिल्कुल। अब सवाल ये है कि हम इस मिले हुए समय का, इस राज्य का कर क्या रहे हैं? क्या हम सिर्फ फौरी सुख, मतलब जो तुरंत मजा दे, जिसे पूज्य गुरुदेव प्रेय कहते हैं, उसी में सारा वक्त गवा रहे हैं
जैसे वो बाकी राजा करते थे?
हाँ, या फिर हम उस समझदार राजा की तरह हैं जो भविष्य का सोचता है, मतलब अपने अंदर के जगत को, अपनी आत्मा को संवारने में लगे हैं, जिसे श्रेय मार्ग कहा गया है।
ये प्रिय और श्रेय, ये शब्द थोड़े और समझाएंगी, खासकर प्रिय जो फौरी सुख है। गुरुदेव ने इसे कैसे समझाया?
उन्होंने इसकी तुलना की है दाद या खुजली से।
खुजली से? वो कैसे?
देखिए, खुजली होती है तो खुजाने में क्षण भर को बड़ा मजा आता है ना?
हाँ, रात मिलती है।
पर ज्यादा खुजाओ तो
वो जगह छिल जाती है, जख्म बन जाता है और फिर ज्यादा दर्द होता है।
बात तो सही है। तो ये इंद्रियों के सुख, ये प्रे बिल्कुल वैसा ही है जैसे जीभ का स्वाद, मजेदार खाने के चक्कर में सेहत बिगाड़ लेना। पूज्य गुरुदेव तो लुकमान हकीम का भी जिक्र करते हैं कि इंसान अपनी जुबान से ही अपनी कब्र खोदता है।
हाँ, गहरा कटाक्ष।
हाँ, और इसी तरह बाकी इंद्रियों के भोग भी हमारी जीवनी शक्ति, हमारा ब्रह्मचर्य, उसे धीरे धीरे कम करते जाते हैं, अंदर से खोखला करते हैं।
तो ये तो हुई तन की खुजली।
हाँ,
क्या मन की भी कोई खुजली होती है?
बिल्कुल होती है, और पूज्य गुरुदेव उसे कहते हैं तृष्णा।
तृष्णा यानी प्यास।
हाँ, पर ये प्यास कभी बुझती नहीं, और ज्यादा पाने की इच्छा, और चाहिए और चाहिए, जरूरत हो न हो बस चीजों के पीछे भागते रहना।
अच्छा, जैसे आजकल की दौड़ है।
हाँ बिल्कुल। इसमें हमारा कीमती वक्त, हमारी एनर्जी, मन की शांति सब बर्बाद होता है, हम बस एक अंधी दौड़ में भागते रहते हैं।
ये तो समझ आ रहा है कि ये इंद्रिय सुख और तृष्णा ये प्रेय वाली चीजें हैं जो आखिर में दुख ही देती हैं। पर इनसे बचना और श्रेय के रास्ते पर चलना, ये सुनने में तो ठीक है पर करें कैसे, बहुत मुश्किल लगता है।
देखिए, पूज्य गुरुदेव गायत्री उपासना का जिक्र करते हैं पर वो साफ कहते हैं कि इसका मतलब सिर्फ माला जपना या कोई पूजा पाठ करना भर नहीं है।
तो फिर क्या है?
उनके गुरु ने उन्हें समझाया था कि ये बाहरी क्रियाएं तो सिर्फ प्रतीक हैं, इशारे हैं। असली उपासना पहला कदम है उपनिषद का वो मंत्र अस्तोमा सद्गमय।
अस्तोमा सद्गमय यानी असत्य से सत्य की ओर ले चलो।
बिल्कुल। असत्य क्या है? यही क्षणिक सुख, ये बाहरी आकर्षण, ये प्रेय। और सत्य क्या है? अपनी आंतरिक उन्नति, आदर्श, अच्छाई यानी श्रेय। तो उपासना का पहला कदम है अपनी दिशा बदलना, प्रेय से मुंह मोड़कर श्रेय को जीवन का लक्ष्य बनाना, अंदर की यात्रा शुरू करना।
यानी स्वर्ग और नरक भी कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, हमारे देखने के तरीके में।
एकदम सही पकड़ा आपने। पूज्य गुरुदेव यही कहते हैं, जब हमारी चेतना, हमारी इच्छाएं बाहरी चीजों में, भोग विलास में, प्रिय में अटकी रहती हैं, तब हम अंदर ही अंदर असंतोष, जलन, अतृप्ति के नरक में जलते रहते हैं।
और जब
हम अपनी चेतना को अंदर मोड़ते हैं, आत्मसुधार, अच्छाई, ऊंचे आदर्शों की तरफ लगाते हैं, श्रेय की ओर चलते हैं, तब हम शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। वही स्वर्ग है, बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों।
दृष्टिकोण बदलने से इतना फर्क पड़ जाता है, शायद इसीलिए वो खलीफा हारून रशीद की पत्नी वाला किस्सा इतना सटीक बैठता है यहाँ।
हाँ बिल्कुल, बहुत ही मार्मिक उदाहरण है वो। सोचिए, एक माँ, उसके दो प्यारे बच्चे अचानक मर गए।
ओह, बहुत दुखद।
हाँ, पर जब उनके पति खलीफा घर आए तो उन्होंने तुरंत रोना पीटना शुरू नहीं किया।
अच्छा, क्या किया उन्होंने?
पहले पति को इत्मीनान से खाना खिलाया, फिर बड़ी सहजता से एक सवाल पूछा, अगर कोई हमें अपनी कोई कीमती चीज, कोई अमानत कुछ वक्त के लिए इस्तेमाल करने को दे और फिर वक्त पूरा होने पर वापस मांग ले, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें रोना धोना चाहिए या चुपचाप वो अमानत लौटा देनी चाहिए?
बड़ा गहरा सवाल पूछा।
खलीफा ने जवाब दिया, अरे इसमें रोने की क्या बात है, अमानत तो लौटानी ही पड़ती है, ये तो सीधा सा हिसाब है।
तब
उस महान नारी ने, उस माँ ने अपने दोनों बच्चों के शवों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए ये बच्चे भी तो ईश्वर की अमानत थे, हमें कुछ समय के लिए मिले थे खेलने खिलाने को, अब ईश्वर ने अपनी अमानत वापस ले ली है, तो इसमें रोना कैसा?
अरे बाप रे, क्या हिम्मत, क्या समझ, मतलब बस नजरिया बदला और पहाड़ जैसा दुख भी सहने लायक हो गया।
बिल्कुल, दृष्टिकोण ही सब कुछ बदल देता है।
तो फिर इस पूरी चर्चा का, इस उद्बोधन का सार क्या निकला, निचोड़ क्या है?
सार यही है जी, कि जीवन के देवता को सवारने का असली मतलब है अपने नजरिए को, अपने दृष्टिकोण को सवारना। ये जो बाहरी क्षणिक सुख है, प्रेय, इनके पीछे पागल होने की बजाय अपने अंदर के गुणों को, संतोष को, नेकी को, आदर्शों को, यानी श्रेय को जीवन का आधार बनाना,
यही सच्ची आध्यात्मिकता है, कर्मकांड से परे।
हाँ बिल्कुल, कर्मकांड तो बाहरी चीज है, असली चीज है अंदर का बदलाव, श्रेय के रास्ते पर चलना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब व्यक्ति ये रास्ता चुनता है तो उसे संतोष रूपी ऐसा खजाना मिलता है जिसके आगे दुनिया की सारी दौलत फीकी है।
और जब हम अपने जीवन की दिशा, अपनी ऊर्जा श्रेय की ओर लगाते हैं, तो शायद बाहर की उथल पुथल, परेशानियां उतना असर नहीं करती, अंदर एक शांति बनी रहती है।
बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे उस समझदार राजा ने अपना भविष्य का द्वीप पहले ही सवार लिया था। वो जानता था कि अंत में वहीं जाना है, तो उसने उसे रहने लायक सुंदर बना लिया।
हाँ,
तो अंत में पूज्य गुरुदेव हमें सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, हम सब के लिए।
क्या सवाल?
कि हम अपने रोज के जीवन में, अपने छोटे छोटे फैसलों में, अपने बड़े इरादों में किस रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम प्रेय के चमक दमक वाले पर फिसलन भरे रास्ते पर हैं, या फिर श्रेय के, शायद थोड़े कठिन पर स्थायी सुख और शांति देने वाले रास्ते पर?
और हमारा ये जीवन रूपी द्वीप, वो कैसा बन रहा है? कहीं वो भोग विलास के बाद वाला वीरान टापू तो नहीं बन रहा?
या फिर सोच समझकर मेहनत से सवारा गया एक खूबसूरत घर? ये चुनाव हमारा है।